एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने सोचने के हमारे तौर तरीकों को, खासकर जोखिम और अनिश्चितता को लेकर, काफी बदला है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसीम निकोलस तलेब की मशहूर किताब द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल की।
हाँ, यानी ऐसी अनहोनी घटनाएं जिनका असर बहुत ज्यादा होता है,
और आज के दौर में ये किताब और भी जरूरी हो जाती है ना?
बिल्कुल, हम लगातार ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनकी किसी ने, मतलब, उम्मीद नहीं की थी।
हाँ, चाहे वो कोई बड़ी महामारी हो,
या अचानक आया आर्थिक संकट,
या फिर तेजी से बदलती तकनीक।
सही कहा, ये किताब हमें इन चीजों को समझने का एक नजरिया दे दिया है, एक फ्रेमवर्क। हमें मूल आइडिया ही यही है।
हाँ,
कि हमारी दुनिया और जिंदगी को औसत रोजमर्रा की चीजें नहीं,
बल्कि वो बहुत ही दुर्लभ, बड़ी असर वाली
और पूरी तरह से अप्रत्याशित घटनाएं शक्ल देती हैं।
बिल्कुल,
तालिब इन्हें ही ब्लैक स्वान कहते हैं।
तो चलिए इस दिलचस्प विचार को थोड़ा और खोलते हैं। क्या है ये?
सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, नसीम निकोलस तालिब।
हाँ, जरूर।
ये लिबनान मूल के अमेरिकी विचारक हैं, सांख्यिकी के जानकार, और पहले फाइनेंशियल मार्केट्स में वो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है ना, उसमें बड़े खिलाड़ी रहे हैं।
हाँ,
मतलब जोखिम का विश्लेषण करना इनका खास काम रहा है।
हाँ, और उनकी सबसे खास बात ये है, मुझे लगता है,
क्या,
कि उनमें किताबी ज्ञान और असल दुनिया का, खासकर वो वॉल स्ट्रीट का जो हाई स्टेक माहौल होता है,
बिल्कुल,
उसका अनुभव दोनों का गजब का मिश्रण है।
सही, वो सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करते, उन्होंने असल में ऐसी रणनीतियां बनाई,
हाँ,
इस्तेमाल की,
जिनसे ऐसी अनहोनी घटनाओं से फायदा उठाया जा सके या बड़े नुकसान से बचा जा सके।
बिल्कुल, उनका नजरिया संदेहवादी अनुभववाद पर आधारित है,
स्केप्टिकल एम्पिरिसिज्म।
अच्छा,
हाँ, मतलब वो सुनने में अच्छी लगने वाली पर शायद गलत थ्योरी के बजाय असल दुनिया के सबूतों और तजुर्बों पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
और वो लबनान वाले गृह युद्ध का अनुभव ही तो था ना उनका।
हाँ बिल्कुल, उस अचानक हुई घटना ने भी भविष्यवाणी करने की हमारी काबिलियत पर उनके शक को और पक्का किया।
और द ब्लैक स्वान उनकी किताबों की एक सीरीज है ना, इंसर्टो नाम से।
हाँ, 5 किताबों की सीरीज है जो अनिश्चितता के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करती है। ये उसी का हिस्सा है।
तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में, अगर एकदम सीधे सीधे पूछें तो?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया में जो रैंडमनेस है, जो बेतरतीबी है, और हमारे ज्ञान की जो सीमाएं हैं, उस पर एक सोचने को मजबूर करने वाली गहरी नजर है। अच्छा, मतलब ये उन धारणाओं को चुनौती देती है जो हमने दुनिया, जोखिम और भविष्यवाणी के बारे में बना रखी हैं।
बिल्कुल, किताब का मुख्य तर्क यही है कि हमारी दुनिया औसत चीजों से नहीं चलती,
बल्कि
चरम और अप्रत्याशित घटनाओं से चलती है। तालिब इस बात की खोज करते हैं कि हम इंसान और समाज इन बड़ी खेल बदलने वाली घटनाओं के असर को समझने में बार बार चूक क्यों जाते हैं,
और इसमें वो हमारे दिमाग की कुछ कमजोरियों की बात करते हैं ना, कॉग्निटिव बायसेस।
हाँ बिल्कुल, यही तो मजेदार बात है, वो हमारे उन कॉग्निटिव बायसेस को उजागर करते हैं जो हमें इन ब्लैक स्वान घटनाओं को देखने से, या कहें समझने से, रोकती हैं।
ये किताब पाठक को एक तरह की दिमागी यात्रा पर ले जाती है।
हाँ,
शुरू होती है ब्लैक स्वान के कॉन्सेप्ट से,
और उसकी 3 खास बातें हैं।
हाँ, पहली तो ये कि दुर्लभ है, अप्रत्याशित, किसी ने सोचा नहीं होता।
बिल्कुल, और दूसरा, असर बहुत बड़ा, जबरदस्त।
हाँ, ह्यूज इम्पैक्ट। और तीसरा
वो ये कि हो जाने के बाद,
हाँ,
हम सब समझदार बन जाते हैं।
हाँ,
हम उसके होने की वजह गढ़ लेते हैं।
हाँ हाँ हाँ, जैसे कि ये तो पता ही था, ये तो होना ही था।
एग्जैक्टली, जिससे लगता है कि इसका अंदाजा तो पहले ही लगाया जा सकता था,
जबकि पहले कोई सोच भी नहीं रहा था।
सही, और फिर तालेब हमारे दिमाग की कुछ और भ्रांतियों पर बात करते हैं,
जैसे
नैरेटिव फैलेसी।
अच्छा, कहानी गढ़ने वाली बात।
हाँ, मतलब जटिल सच्चाइयों को आसान सीधी सादी कहानियों में फिट करने की हमारी आदत।
और दूसरी
लुडिक फैलेसी।
लुडिक, ये क्या है?
मतलब हम असल जिंदगी की उलझी हुई गंदी सी रैंडमनेस पर खेल जैसे साफ सुथरे आसान मॉडल लागू करने की गलती करते हैं, जैसे कैसीनो का गेम।
अच्छा, जैसे सब कुछ नियमों में बंधा हो।
हाँ, जबकि असल दुनिया में नियम बदलते रहते हैं।
फिर वो दो तरह के दुनियाओं का जिक्र करते हैं, मीडियोक्रिस्टान और एक्सट्रीमिस्टान। हाँ,
मीडियोक्रिस्टान जहाँ औसत का राज चलता है।
जैसे इंसानों की लंबाई या वजन, यहाँ एक इंसान के बहुत लंबा या भारी होने से औसत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक्सट्रीमिस्तान?
वहाँ सिर्फ एक घटना, एक व्यक्ति, एक चीज सब कुछ बदल सकती है।
जैसे?
जैसे किसी की दौलत, किसी किताब की बिक्री या शेयर बाजार का क्रैश होना। यहाँ एक बिल गेट्स या एक जेके रोलिंग पूरे औसत को हिला देते हैं।
समझ गई। और वो आंकड़ों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य बेल कर्व की भी आलोचना करते हैं?
अरे तीखी आलोचना, वो उसे एक बड़ा बौद्धिक धोखा कहते हैं।
धोखा? क्यों?
खासकर जब इसे वित्त जैसे एक्सट्रीमिस्टान वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी घटनाओं की संभावना को बहुत कम दिखाता है।
अच्छा।
और आखिर में किताब एक अनिश्चित दुनिया में जीने का नया तरीका सुझाती है,
जो भविष्यवाणी पर आधारित नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि मजबूती और तैयारी पर जोर देकर, रोबस्टनेस पर। इससे में तालिब ज्ञान के साथ हमारे रिश्ते पर ही सवाल उठाते हैं।
अच्छा।
ब्लैक स्वान अवधारणा, जैसा हमने कहा ये नाम आया उस पुरानी सोच से कि सारे हंस सफेद होते हैं जब तक ऑस्ट्रेलिया में काले हंस नहीं मिल गए।
एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि सिर्फ देखकर अपने अनुभव से सीखने की अपनी सीमाएं हैं। वो तीन शर्तें याद है ना?
हाँ, दुर्लभ, बड़ा असर और बाद में लगने वाली आने पूर्वानुमानितता।
सही। और यही वो दो दुनियाओं का फर्क समझाते हैं, मीडियोक्रिस्टैन बनाम एक्सट्रीमिस्टैन। ये समझना बहुत जरूरी है ना?
बहुत ज्यादा। मीडियोक्रिस्टैन में चीजें औसत के आसपास रहती हैं,
जैसे हमने कहा वजन या लंबाई।
हाँ, और एक्सट्रीमिस्टैन में असमानताएं बहुत बड़ी होती हैं। एक ही ऑब्जर्वेशन सब कुछ बदल सकती है। तालिब कहते हैं कि हमारी आज की जिंदगी के ज्यादातर अहम हिस्से, पैसा, तकनीक, विचार, ये सब एक्सट्रीमिस्तान में आते हैं।
लेकिन हम सोचते मीडियोक्रिस्टान के नियमों से हैं।
हाँ, और यही गड़बड़ होती है।
हाँ, और इसी गलत सोच की वजह से हम कुछ खास तरह की गलतियां करते हैं ना, वो कॉग्निटिव बायसेस।
बिल्कुल। उनमें से कुछ बहुत मजेदार है।
टर्की वाला उदाहरण, टर्की एलेगरी, ये तो क्लासिक है।
हाँ, ये एक बड़ा पावरफुल उदाहरण है। सोचिए एक टर्की है जिसे 1000 दिन तक रोज खाना खिलाया जाता है।
रोज? तो वो तो खुश होगा।
बिल्कुल। हर गुजरते दिन के साथ उसका भरोसा बढ़ता जाता है कि इंसान बड़े अच्छे हैं, दोस्त हैं और उसे हमेशा खाना खिलाएंगे।
उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है।
हाँ, थैंक्सगिविंग त्योहार से ठीक एक दिन पहले उसका आत्मविश्वास एकदम पीक पर होता है।
और फिर
अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे थैंक्सगिविंग डिनर के लिए काट दिया जाता है।
ओहो, कितना सटीक उदाहरण है,
है ना? ये दिखाता है कि पिछले अनुभव, चाहे कितना भी लंबा हो, के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाना कितना खतरनाक हो सकता है।
खासकर तब जब एक बड़ा बदलाव मुमकिन हो। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स।
बिल्कुल। और एक और बड़ी गलती है।
कौन सी?
नैरेटिव फैलेसी,
कहानी गढ़ने की भ्रांति।
अच्छा, कहानियों वाली बात।
हाँ।
हम इंसान है ना, हमें कहानियां पसंद है, सुनना, सुनाना। हमें बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक सीधी साधी कहानी बनाना पसंद है, ताकि लगे कि सब कुछ किसी वजह से हो रहा है
और उसका अंदाजा लगाया जा सकता था, कॉज एंड इफेक्ट।
एग्जैक्टली। इससे हमें लगता है कि हम दुनिया को समझ रहे हैं,
पर असल में
हम सच्चाई की जटिलता को, उसकी रैंडमनेस को नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास को भी हम ऐसे ही देखते हैं,
जैसे सब कुछ पहले से तय था,
जबकि वो अचानक हुई घटनाओं से भरा पड़ा है। और एक और चीज,
साइलेंट एविडेंस, खामोश सबूत, ये क्या है?
हम अक्सर सिर्फ कामयाब लोगों और सफल चीजों को देखते हैं, विनर्स को।
हाँ, ये तो है, सर्वाइवरशिप बायस जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। हम उन अनगिनत नाकामयाबियों, उन विचारों जो चले नहीं, उन लोगों जो सफल नहीं हुए,
उन्हें भूल जाते हैं या देखते ही नहीं।
हाँ, ये खामोश सबूत यानी नाकामयाबियों का कब्रिस्तान हमें जोखिम और कामयाबी की संभावनाओं के बारे में एक गलत बायस तस्वीर दिखाता है।
हम कामयाब लोगों के गुण गिनाते हैं,
पर ये भूल जाते हैं कि वही गुण शायद नाकामयाब लोगों में भी थे, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया।
बात तो सही है। तो ये था पहला हिस्सा, अब दूसरे हिस्से में क्या है?
किताब का दूसरा हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि भविष्य का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन क्यों है।
अच्छा।
लुडिक फैलेसी, खेल वाली भ्रांति, ये भी एक अहम आइडिया है।
ये वही कसीनो वाली बात।
हाँ, ये गलती तब होती है जब हम कसीनो के खेल, जैसे पासा फेंकना, जिसकी रैंडमनेस साफ सुथरी है, नियम तय हैं, उसे असल जिंदगी की उलझी हुई बिना तय नियमों वाली रैंडमनेस समझ बैठते हैं।
अच्छा।
तालिब कहते हैं कि जोखिम का हिसाब लगाने वाले कई अकादमिक मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल, वो खेल जैसे होते हैं। वे माने हुए नियमों के तहत काम करते हैं, जबकि असल दुनिया में नियम कभी भी बदल सकते हैं।
और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में मॉडल ने सोचा भी नहीं था।
ब्लैक स्वान।
एग्जैक्टली।
सही बात।
और वो तथाकथित विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों की भी आलोचना करते हैं।
हाँ, कड़ी आलोचना। वो दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था या राजनीति जैसे जटिल क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स भविष्य बताने में अक्सर आम लोगों से बेहतर नहीं होते।
सच में?
हाँ, और कभी कभी तो अपने अति आत्मविश्वास के कारण और भी खराब साबित होते हैं।
अरे,
उनका काम अक्सर निश्चितता का भ्रम पैदा करना ज्यादा होता है बजाय कोई असली मदद करने के। तालिब इस बात पर जोर देते हैं कि हम जो जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हम क्या नहीं जानते।
बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
बिल्कुल।
फिर तीसरा हिस्सा एक्सट्रीमिस्तान की प्रकृति को और गहराई से समझाता है, है ना?
हाँ, वो बताते हैं कि एक्सट्रीमिस्तान में विजेता ही सब कुछ ले जाता है वाला हिसाब चलता है, विनर टेक ऑल डायनामिक्स,
जहां कामयाबी बहुत असमान रूप से बटी होती है।
हाँ, सोचिए कैसे कोई एक किताब या फिल्म सुपरहिट हो जाती है और बाकी फ्लॉप,
या कोई एक कंपनी पूरे बाजार पर छा जाती है।
सही, और यही वो बेल कर्व पर अपना सबसे तीखा हमला करते हैं।
बेल कर्व की आलोचना, हाँ, ये पहले भी जिक्र हुआ था।
उनका कहना है कि ये सामान्य वितरण वाला ग्राफ शायद मीडियोक्रिस्तान के लिए ठीक हो,
लेकिन एक्सट्रीमिस्तान में से इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है।
हाँ, क्यों? क्योंकि ये बड़ी चरम घटनाओं की संभावना को बहुत कम करके आंकता है, एकदम ना के बराबर।
अच्छा,
बेल कर्व के हिसाब से शेयर बाजार का बुरी तरह गिरना मतलब एक बड़ा क्रैश, एक बेहद दुर्लभ घटना होनी चाहिए, सदियों में एक बार।
पर असल में
ऐसा उससे कहीं ज्यादा भार होता है, हमने देखा है।
हाँ, 2008 का संकट या उससे पहले भी।
बिल्कुल। तो इसे वित्त में इस्तेमाल करना तालिब के अनुसार 2008 के वित्तीय संकट जैसी त्रासदियों की एक वजह बना। यह हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देता है।
समझ गई, बहुत खतरनाक है ये तो। और आखिर में चौथा और अंतिम भाग।
हाँ, अंतिम भाग इस बात पर व्यवहारिक सलाह देता है कि ऐसी दुनिया में कैसे जिया जाए जहाँ ब्लैक स्वान का राज चलता है।
मतलब भविष्य का अंदाजा लगाने के बजाय हम खुद को अप्रत्याशित के लिए तैयार कैसे करें।
बिल्कुल, यहीं पर बारबेल रणनीति का जिक्र आता है।
बारबेल, वो जिम वाला?
हाँ, वही। ये वाकई एक दिलचस्प तरीका है। तालिब कहते हैं बीच का यानी मध्यम जोखिम लेने के बजाय,
हाँ,
अपने संसाधनों को दो किनारों पर बांटो, बारबेल की तरह, जिसके दोनों सिरों पर वजन होता है और बीच में रॉड पतली होती है।
अच्छा, कैसे?
एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 85-90%,
हाँ,
उसे बहुत ही सुरक्षित चीजों में लगाओ, जैसे सरकारी बॉन्ड या नकद पैसा, ऐसी चीजें जो किसी बड़ी बुरी घटना यानी नेगेटिव ब्लैक स्वान में खत्म ना हो, एकदम सेफ।
ठीक है, और बाकी बचा छोटा हिस्सा 10-15%,
उसे बहुत ज्यादा सट्टेबाजी वाले ऊंचे जोखिम वाले कामों में लगाओ।
जैसे
किसी नए स्टार्टअप में पैसा लगाना या कुछ खास किस्म के वित्तीय सौदे करना जिनमें बहुत भारी मुनाफे की संभावना हो,
यानी किसी सकारात्मक ब्लैक स्वान की संभावना।
एग्जैक्टली। यहाँ मकसद भविष्यवाणी करना नहीं है,
बल्कि
बुरी ब्लैक स्वान घटनाओं के सामने मजबूत बने रहना, उनसे बचना,
और अच्छी ब्लैक स्वान घटनाओं के मौकों के लिए तैयार रहना, उनका फायदा उठाना।
हाँ, सारी बात लचीलेपन और तैयारी की है, ना कि सटीक भविष्यवाणी की। बी रोबस्ट, नॉट प्रेडिक्टिव।
तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो?
हाँ, कुछ खास बातें हैं जो उभरकर सामने आती हैं।
1,
अप्रत्याशित का दबदबा। दुनिया धीरे धीरे अंदाजे के मुताबिक नहीं बदलती, बल्कि अचानक आए बड़े झटकों से बदलती है। इतिहास रेंगता नहीं, कूदता है।
हाँ, जैसे इंटरनेट का आना या कोई वैश्विक महामारी।
बिल्कुल। दूसरा,
2, मीडियोक्रिस्तान बनाम एक्सट्रीमिस्तान, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये समझने के लिए एक बुनियादी ढांचा है कि जोखिम कहाँ और कैसे काम करता है। हम अक्सर गलत दुनिया के लिए गलत औजार इस्तेमाल करते हैं,
जैसे पैसे और तकनीक के लिए बेल कर्व यूज करना।
सही। और 3, हमारी दिमागी कमजोरियां, खासकर कहानी गढ़ने की आदत। हमारा दिमाग पैटर्न देखने और कहानियां बनाने के लिए बना है,
जिससे हमें दुनिया को समझने का झूठा एहसास होता है। हम कामयाब लोगों की कहानियों को आसान बना देते हैं और किस्मत के रोल को भूल जाते हैं।
बिल्कुल। और चौथा,
4, गलत मॉडलों का जाल, खासकर बेल कर्व। आंकड़ों के मॉडल जब गलत जगह इस्तेमाल होते हैं
तो सुरक्षा का खतरनाक भ्रम पैदा कर सकते हैं। बेल कर्व एक्सट्रीमिस्तान में बड़े जोखिमों को कम आंकता है।
बिल्कुल। और इसके साथ ही 5वां पॉइंट।
हाँ, और छठा,
6, मजबूती पर ध्यान, भविष्यवाणी पर नहीं,
क्योंकि हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते।
हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो झटके झेल सकें और अचानक मिले मौकों का फायदा उठा सकें। तैयारी भविष्यवाणी से बेहतर है।
और आखिरी
7, खामोश सबूत जो हम नहीं देखते,
यानी नाकामयाबियां वो घटनाएं जो नहीं हुई।
वो अक्सर सबसे अहम जानकारी होती है, पर हम उसे लगातार नजरअंदाज करते हैं।
हाँ, जैसे सिर्फ सफल स्टार्टअप्स की कहानी सुनना, उन हजारों की नहीं जो बंद हो गए।
बिल्कुल, उनसे सीखना शायद ज्यादा जरूरी है।
अगर हम इसे भारत के रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ें तो ये बातें और साफ हो जाती हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल।
सोचिए कैसे कोई कारोबार अचानक बदले सरकारी नियम से,
या मानसून की बेरुखी से,
या सप्लाई चेन में आई रुकावट से प्रभावित हो जाता है। ये सब ब्लैक स्वान ही तो हैं बिजनेस के लिए।
या कैसे किसी छात्र की जिंदगी की राह किसी अप्रत्याशित मौके से,
जैसे कहीं इंटर्नशिप मिल गई या किसी खास इंसान से मुलाकात हो गई,
उससे पूरी तरह बदल जाती है।
और शेयर बाजार में अचानक आने वाली बड़ी गिरावट या उछाल, ये तो क्लासिक एक्सट्रीमिस्तान है।
ये सब दिखाते हैं कि औसत वाले नियम यहाँ लागू नहीं होते।
सही कहा।
तालिब का लिखने का अंदाज काफी प्रोवोकेटिव है, और किताब ऐसी पंक्तियों से भरी है जो याद रह जाती हैं। कुछ पर नजर डालें?
हाँ जरूर।
1, ब्लैक स्वान की परिभाषा पर। जिसे हम यहाँ ब्लैक स्वान कहते हैं, उसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, ये एक बाहरी घटना है। दूसरा, इसका अत्यधिक प्रभाव होता है। तीसरा, इसके बाहरी होने के बावजूद मानव स्वभाव हमें घटना के बाद इसके होने के स्पष्टीकरण गढ़ने पर मजबूर करता है, जिससे यह व्याख्या करने योग्य और पूर्वानुमानित लगती।
हाँ, ये तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है। सिर्फ दुर्लभ होना काफी नहीं है, हमारी जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है
वही हमें सीखने से रोकती है।
बिल्कुल।
और कहानी गढ़ने वाली आदत पे वो क्या कहते हैं?
2, नैरेटिव फैलेसी पर। तथ्यों के क्रम को बिना उनमें मतलब या कारण कार्य का रिश्ता ढूंढे देख पाने की हमारी सीमित क्षमता। ये आदत तब गलत हो जाती है जब ये हमें अपनी समझ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर सोचने पर मजबूर करती है।
मतलब कहानियों की हमारी चाहत हमें जटिल और बेतरतीब चीजों को समझने से रोक सकती है।
हाँ, हम हर चीज में वजह ढूंढते हैं, कहानी बनाते हैं, चाहे वो हो या ना हो। रैंडमनेस हमें पसंद नहीं।
और वो टर्की वाला उदाहरण?
3, टर्की रूपक पर। थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार की दोपहर को टर्की के साथ कुछ अप्रत्याशित होगा, इससे उसके विश्वास में संशोधन होगा।
कितना सटल ह्यूमर है, ये एक मुश्किल फलसफे को यादगार बना देता है।
और सबक ये है कि लंबे समय तक सब ठीक चलना
अचानक आने वाले झटके के लिए सबसे खराब तैयारी हो सकती है। सुरक्षा का भ्रम ही सबसे बड़ा खतरा है।
बिल्कुल। और विशेषज्ञों के बारे में उनका कहना भी काफी तीखा है।
4, विशेषज्ञों पर। विशेषज्ञों के साथ समस्या ये है कि वे ये नहीं जानते कि वे क्या नहीं जानते।
मतलब
ये जटिल और अनिश्चित मामलों में विशेषज्ञता की सीमाओं की ओर इशारा करता है। बहुत ज्यादा विशेषज्ञता हमें बड़ी तस्वीर देखने से रोक सकती है, या हमें अति आत्मविश्वासी बना सकती है। अब रोज
और जोखिम पर।
5, रोजखिम पर। आप जोखिम उठाने वाले हो सकते हैं और फिर भी बर्बादी के जोखिम से पूरी तरह बचना चाह सकते हैं।
अच्छा, ये कैसे?
ये अनिश्चितता में फैसले लेने का एक तरीका बताता है। ऐसे जोखिमों से बचें जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर दें।
लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें या अच्छे अचरजों, पॉजिटिव ब्लैक स्वान्स के लिए दरवाजे खुले रखें।
हाँ, यही बारबेल रणनीति का निचोड़ है। डोंट रिस्क रुइन बट सीक अपसाइड।
ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि हम इन विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें प्रैक्टिकली।
हाँ बिल्कुल, जैसे निवेश में।
तो जैसा हमने बात की, बारबेल रणनीति अपना सकते हैं,
यानी ज्यादातर पैसा सेफ जगह और थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली जगह।
हाँ, और बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की कोशिश करने से बचें,
क्योंकि वो नामुमकिन है
लगभग। हाँ, बेहतर है कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो अलग अलग हालात झेल सके, रोबस्ट हो,
और उन मौकों को महत्व दें जहाँ नुकसान सीमित हो पर फायदे की संभावना बहुत ज्यादा हो, ऑप्शनैलिटी जिसे कहते हैं।
बिल्कुल।
और करियर और कारोबार में
वहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है। सिर्फ एक ही हुनर या तय रास्ते पर चलने के बजाय
कई तरह के कौशल सीखें,
मल्टी स्किल्ड बने।
हाँ,
लचीले बने रहें, अडैप्टेबल।
और कारोबारों को सिर्फ एफिशिएंसी के लिए ही नहीं
बल्कि अप्रत्याशित झटकों को झेलने लायक भी बनाना चाहिए।
जैसे?
जैसे कुछ कैश रिजर्व रखना, बफर रखना, सप्लाई के लिए एक से ज्यादा सोर्स रखना, बैकअप प्लान तैयार रखना।
मतलब थोड़ी सी इनएफिशिएंसी अच्छी है मजबूती के लिए।
बिल्कुल। और कंपनी में एक संदेह की संस्कृति को बढ़ावा देना, मान्यताओं पर सवाल उठाने की आदत डालना।
और निजी जिंदगी में?
वहां भी अचानक मिलने वाले अच्छे मौकों से सेरेंडिपिटी के लिए गुंजाइश रखें।
कैसे?
नई चीजें आजमाएं, नए लोगों से मिलें, ऐसी जगहों पर जाएं जहां आप आमतौर पर नहीं जाते।
अच्छा।
जिंदगी को बहुत ज्यादा प्लान करने, ओवर ऑप्टिमाइज करने से बचें।
हाँ।
क्योंकि आप अप्रत्याशित को प्लान नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी,
बौद्धिक विनम्रता अपनाएं।
हाँ, माने कि आप बहुत कम जानते हैं और सोचें कि आपके पिछले अंदाजे कितने गलत साबित हुए। गलतियों से सीखना अहम है।
एक उदाहरण सोचे, मान लीजिए कोई अपना करियर बदलना चाहता है, तो ये अंदाजा लगाने के बजाय कि कौन सा फील्ड आगे चलेगा,
वो एक ऐसा कदम उठा सकता है जिससे कई रास्ते खुले रहें, ऑप्शंस बने।
या फिर एक सुरक्षित नौकरी करते हुए साथ में अपने किसी शौक या जुनून पर साइड में काम कर सकता है।
ये भी बारबल रणनीति का ही एक रूप है।
हाँ, इससे जोखिम कम होता है और किसी अप्रत्याशित कामयाबी का मौका बना रहता है।
तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं, फाइनल टेकअवेज?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख बौद्धिक विनम्रता की है। ये मानना कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बेतरतीब और अप्रत्याशित है। अंदाजे लगाने पर टिके रहने के बजाय हमें अज्ञात का सम्मान करना सीखना होगा। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो।
और मेरे लिए ये एहसास काफी चौंकाने वाला था कि कैसे हमारे अपने सोचने का तरीका,
जैसे कहानियों में खो जाना या नाकामयाबियों को अनदेखा करना,
हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। हम अक्सर कहानियों को हकीकत समझ बैठते हैं।
बिल्कुल।
और बारबेल रणनीति वाकई एक व्यावहारिक तरीका लगता है अनिश्चितता से निपटने का, बिना भविष्य जानने का दावा किए।
हाँ, ये एक्शन लेने लायक आइडिया है।
पर यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हम वाकई अपनी सोच बदलने,
अपने आरामदेह पूर्वानुमानों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये मुश्किल है।
बिल्कुल सही सवाल है।
और ये विचार कि भविष्यवाणी करना छोड़कर मजबूती और लचीलापन बनाने पर ध्यान देना है,
रोबस्टनेस एंड रेजिलियंस,
ये वाकई हिम्मत देता है। ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने देता है जिन्हें हम काबू कर सकते हैं, हमारी तैयारी और प्रतिक्रिया,
बजाय उन चीजों के जिन्हें हम काबू नहीं कर सकते, यानी भविष्य।
हाँ, बुरी घटनाओं से बचाओ और अच्छी घटनाओं के स्वागत की तैयारी।
संक्षेप में कहें तो द ब्लैक स्वान हमें दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देती है,
एक ऐसा चश्मा जो अनिश्चितता को स्वीकार करता है
और हमें उसके लिए तैयार रहने की चुनौती देता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है, एक दिमागी औजार।
हाँ, जो हमें इस अप्रत्याशित दुनिया में बेहतर ढंग से जीने में मदद कर सकता है।
और ये हमें याद दिलाकर कि जो नहीं हुआ या जो हमने नहीं देखा, वो अक्सर उससे ज्यादा मायने रखता है जो हो चुका है या जो हम देख रहे हैं।
अब ये सोचना हमारे ऊपर है कि हम इस नजरिए को कितना अपनाते हैं, खासकर तब जब हमारी शिक्षा और समाज शायद हमें निश्चितता की झूठी उम्मीद ज्यादा देते हैं। एक सोचने वाली बात है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।